समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, जुड़ गए हैं आप अपने मनपसंद न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा के इस नए एपिसोड में, जहां हम करते हैं आपका हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम के जरिए करेंगे परिक्रमा पूरे देश की, जान पाते हैं यहां हम देश विदेश में होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में और नजर डालते हैं खेल की दुनिया पर भी। इतना ही नहीं बल्कि याद करेंगे आज उन लोगों को भी जो या तो इस दिन दुनिया में आए या फिर उन्होंने हमसे आज के ही दिन कहा अलविदा। साथ ही वहां तक भी हम पहुंचाएंगे आपका सलाम जिनका आज जन्मदिन है। परिक्रमा के इस नए अंक में मैं हूं प्राची प्रिया और मेरे साथ है मेरी को होस्ट अनुजा कुमार। नमस्ते अनुजा।
नमस्ते, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू प्राची। प्राची, व्हाट अ डे टुडे। मनु भाकर मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन टू ओलंपिक मेडल्स इन वन सिंगल ओलंपिक एडिशन। She won a bronze in the 10-meter air pistol shooting as well as another bronze in mixed 10-meter air pistol shooting at the ongoing Olympics in Paris. We will bring you more updates in sports section. Till that time, keep basking in the happiness of achievement from this star performer of our country. And now let's surprise you with the news making headlines at this hour. In Paris Olympics, India wins its second medal. Manu Bhakar and Sarabjot Singh win bronze in 10-meter air pistol mixed team event. Manu creates history by becoming first Indian to win two medals in a single Olympics.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश का सकल घरेलू उत्पाद 8% की दर से बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
In Kerala, over 40 people killed and more than 100 injured in a massive landslide in Wayanad. Army, Navy and NDRF pressed into rescue and relief operations.
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
In Jharkhand, 2 killed after 18 coaches of Howrah-Mumbai Mail derail between Bada Bambo and Kharsawa railway stations.
Sri Lanka aur Bharat ke beech 3 matchon ki shrinkhala ka teesra T20 cricket match aaj sham Pallikal mein khela jayega.
And Prachi, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about International Friendship Day and also World Day Against Trafficking in Persons.
Ye kaisi ladki hai?
Iska main kya karun?
इससे मैं क्या कहूँ?
ये लड़ता है,
अकड़ती है,
झगड़ता है,
बिगड़ती है,
दीवाना है,
दीवानी है।
But he's your best friend, yeah.
But she's your best friend, yeah.
Certainly one of the most popular songs from a movie, Hindi movie, which made friendship very, very popular. Of course, Prachi, friends are indispensable pillars of support throughout our lives, embodying the essence of companionship, trust and mutual understanding. From a childhood friend to your work bestie, friends are those who lend a listening ear and make life's journey more meaningful. They stay by our side through thick and thin, and to commemorate this special bond, the International Day of Friendship is celebrated. The day cherishes the invaluable bonds that enrich our lives and bring joy to our hearts.
बिल्कुल अनुजा, और दोस्त वो होते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, गलत और सही का अंतर बताते हैं। दोस्त आपके मानसिक और सामाजिक विकास में भी सहायक होते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि मित्रता मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण संबंध है। इस दिन को मनाकर हम न केवल अपनी व्यक्तिगत मित्रता को मजबूत करते हैं बल्कि एक अधिक समझदार और बेहतर समाज के निर्माण में भी योगदान देते हैं। अनुजा, वो एक शेर है ना अहमद फराज का कि अगर तुम्हारी अना का ही सवाल है तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूं दोस्ती के लिए।
Certainly, Prachi. It serves as a reminder to cherish and appreciate the friendship that enrich our lives. And even United Nations shared a greeting with social media today on World Friendship Day. The International Day of Friendship was proclaimed in 2011 by the UN General Assembly with the idea that friendship between people, countries, cultures and individuals can inspire peace efforts and build bridges between communities. The resolution places emphasis on involving young people as future leaders in community activities that include different cultures and promote international understanding and respect for diversity. Over the years, the idea of commemorating the International Day of Friendship gained popularity and various nations began adopting the occasion. While July 20th is celebrated as International Friendship Day, it is observed on the first Sunday of August in some places.
और इस दिन को खास बनाने के लिए आप अपने दोस्तों को विशेष उपहार भी दे सकते हैं। ये उपहार उनके पसंदीदा शौक या फिर आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुने जा सकते हैं, जैसे कि उनकी कोई पसंदीदा किताब या फिर कोई पर्सनलाइज्ड गिफ्ट या उनकी पसंदीदा मिठाइयां। इससे आपका दोस्त का जो एक समूह है, एक जो दोस्ती वाला जो एक माहौल है, उसको आप बहुत ही एक हैप्पी सेंटिमेंट आप दे पाएंगे उसको।
एब्सोल्युटली।
अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर समय भी बिता सकते हैं, चाहे वो एक छोटी सी पिकनिक हो, एक मूवी नाइट हो या बस कैफे में बैठकर बातें करना हो। ये समय एक साथ बिताना रिश्तों को मजबूत करता है।
Right, Prachi. A true friendship makes life easy and gives us good times. Thus, when the going gets tough, we depend on our friends for solace. Sometimes it is not possible to share everything with the family. That is where friends come in. And we can share everything with them without the fear of being judged. That's the best of being in a friendship. And friendship is a deep and meaningful connection between individuals based on mutual respect, trust, support, and of course, understanding, without which it is not possible. A true friend is someone who stands by you in good times and bad, who accepts you for who you are, and who genuinely cares about your well-being.
Bilkul sahi baat hai.
And if we talk about International Friendship Day, it holds immense significance as it bridges gaps and brings people together. It's a day that encourages people to cherish and strengthen their existing friendships while extending the hand of friendship of others, irrespective of nationality, race, religion, or any other differences. And that's where the diverse cultural backgrounds come in to bring peace in the world.
बिल्कुल अनुजा, और दोस्ती में कहां कोई रंग रूप देखता है, कहां कोई देखता है कि हम कहां से बिलोंग करते हैं। बस एक दिल का जो कहते हैं ना, दिलों के तार मिलने पर जो है वो एक दोस्ती हमारी जो है वो हमेशा ताउम्र बरकरार रहती है।
Absolutely. So celebrating friendship day is a wonderful opportunity to express gratitude for the friends who stand by us through life's ups and downs. And of course today we will also discuss about World Day Against Trafficking in Persons. International days and weeks are occasions to educate the public on issues of concern, to mobilize political will and resources to address global problems, and also to celebrate and reinforce achievements of humanity. And today, on 30th of July, we also observe World Day Against Trafficking in Persons. Globally, one in three victims of human trafficking is a child, and the majority of these trafficked children are girls. According to the Global Report on Trafficking in Persons by the UN Office on Drugs and Crime, children are twice as likely as adults to face violence during trafficking. As a part of the global campaign of initiating actions against human trafficking, the World Day Against Trafficking in Persons is observed every year on 30th of July.
बिल्कुल। और बच्चों को विभिन्न प्रकार की ये जो तस्करी होती है उसका शिकार भी बनाया जाता है, जिसमें जबरन श्रम करवाया जाता है, उनके खिलाफ अपराध होते हैं, उनसे भीख मंगवाया जाता है, अवैध रूप से गोद ले लेते हैं, यौन शोषण और अपमानजनक छवियों का ऑनलाइन प्रसार भी शामिल है। बाल तस्करी के कारण वैसे तो अनेक हैं, इसमें से प्रमुख हैं गरीबी।
Right. And this year's theme, if we talk about it, is Leave No Child Behind in the Fight Against Human Trafficking. This year's global campaign focuses on vulnerability of children and urges accelerated action to end child trafficking. And this year's global campaign for World Day Against Trafficking in Persons urges accelerated action to end child trafficking. Trafficking in persons is a serious crime, Prachi, and a grave violation of human rights as well. Every year, thousands of men, women and children fall into the hands of traffickers in their own countries and abroad. Almost every country in the world is affected by trafficking. So amid this overlapping crisis such as armed conflicts, pandemics, economic hardships and environmental challenges, children are increasingly vulnerable to trafficking. Furthermore, the proliferation of online platforms poses additional risks as children often connect to these sites without adequate safeguards. Traffickers exploit them online platforms, social media, and the dark web to recruit and exploit the children. So we have to take all these things into account. The physical and psychological scars of these crimes persist long into adulthood, robbing them of their innocence, future, and also of their fundamental rights. And that is why communities worldwide come together to support each other and raise awareness about human trafficking, to recognize the trauma of the survivors and to educate more people about this horrific crime that affects so many lives. So on this day, let us renew our commitment for a future where every child is safe and free.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के मार्गदर्शन में 7 से 11 अगस्त तक 7वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग तथा संस्कृति सोसायटी फॉर आर्ट्स एंड कल्चर डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के मार्गदर्शन में 7 से 11 अगस्त 2024 तक 7वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग तथा संस्कृति सोसायटी फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणवी सिनेमा कला एवं संस्कृति के विकास को समर्पित हरियाणा का एकमात्र फिल्म महोत्सव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल एवं सिनेट हॉल में आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में देश विदेश की प्रसिद्ध फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फीचर फिल्म, लघु फिल्म, एनिमेशन, वृत्त चित्र, संगीत वीडियो आदि सहित 75 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस समारोह में 16 देशों की 19 भाषाओं की फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियां यशपाल शर्मा, रजा मुराद, राजेंद्र गुप्ता, शिखा मल्होत्रा, योगराज सिंह, अवतार गिल, एकता तिवारी और शिशिर शर्मा इसमें हिस्सा लेंगे। आकांक्षा सक्सेना परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से।
And now we take you to Bihar, where Nalanda University was an ancient center of learning, also the first residential university of the world. At its peak, it is believed to have possessed 2,000 teachers and 10,000 students, and it attracted scholars to its campus from places as distant as China, Korea, Japan, Tibet, Sri Lanka, and Southeast Asia. So we talk about Nalanda University because they will soon be broadcasting community radio service, and where Rajgir and surrounding areas will benefit from this. We have more from our correspondent.
Bihar ke Nalanda Vishwavidyalay ko samudayik radio prasaran ki anumati mil gayi hai. Jald hi iska prasaran shuru hoga. Jnan vigyan ke karyakramon ke alawa yah samudayik radio logon ke sath samvad ke karyakram bhi prasarit karega. Isse aas paas ke log labhanvit honge. Vishwavidyalay mein वर्तमान में कुल 6 विद्यापीठ के माध्यम से अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती है। ऐतिहासिक अध्ययन, पारितंत्र और पर्यावरण, बौद्ध अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति अध्ययन इसके अंतर्गत प्रमुख विद्यापीठ हैं। विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने बताया कि सामुदायिक रेडियो के माध्यम से विश्वविद्यालय को लोगों से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा।
क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र से जुड़ने के लिए कम्युनिटी रेडियो सामुदायिक के लिए यहाँ पर होना चाहिए, जिसका प्रसारण जो है वो उस संस्था के द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा वो सूचनाएं प्रेषित की जा सकती हैं, जिसका उपयोगिता क्षेत्र के लिए हो, उनको समय समय पर मंत्रणा दी जाए, उनको किसी प्रकार के जैसे बीमारियों वगैरह काल में तो पहले से उनको सूचनाएं दी जाए, उनको अच्छे संदेश दिए जाए, तो ये सब चीजों को वो रेडियो के माध्यम से किया जाता है। ज्ञान का प्रसार किया जाता है, सूचना का प्रसार किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये योजना जो थी, हमने इसके लिए अप्लाई किया था, कम्युनिटी रेडियो स्वीकृत हो गया है भारत सरकार के द्वारा, अब उसका स्टेशन यहाँ शुरू होगा। तो करीब उसका एक क्षेत्र है कि 10-15 किलोमीटर की दूरी के बीच में वो उसका प्रसारण जो है सुना जा सकता है। तो वो अब जल्दी शीघ्र ही उसकी स्थापना हो जाएगी और वो प्रसारित करेगा। तो हम इस प्रकार से जन समुदाय के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते।
सामुदायिक रेडियो प्रसारण सेवा शुरू होने से नालंदा विश्वविद्यालय को आसपास के ग्रामीण परिवेश के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा। इससे क्षेत्र के लोगों को पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और वर्तमान समय की चुनौतियों के समाधान के लिए उपयोगी जानकारी मिल सकेगी। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
और नालंदा बिहार के बाद आइए चलें अब उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पौधारोपण के साथ ही हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। राज्य का कुल हरित क्षेत्र 2021-22 में 9.23% था, जिसे 2026-27 तक बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है।
उत्तर प्रदेश में बीते 6 वर्षों में 168 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए गए हैं। वहीं इस वर्ष 20 जुलाई को वृक्षारोपण महाअभियान के तहत प्रदेश भर में 36 करोड़ 50 लाख पौधारोपण किया गया। सरकार विशेष कार्य योजना के साथ अपने इन प्रयासों को आगे बढ़ा रही है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। इसी दिशा में सरकार ने मित्र वन बसाने का फैसला किया है। इसके तहत नेपाल के साथ ही प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में समन्वय स्थापित कर सीमावर्ती क्षेत्रों पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 35 वन प्रभागों ने स्थानों का चयन कर लिया है। इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने बताया कि नेपाल के साथ ही दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के सहयोग से सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे।
अपने प्रदेश से जितनी भी सीमाएं मिलती हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो, नेपाल हो, उत्तराखंड हो, सभी जिलों से जहाँ जहाँ हमारी सीमाएं मिलती हैं, वहाँ के हम राजनीतिकों को अपने बुलाएंगे, कहीं मित्र बन, ये आपकी एंट्री हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप आओगे, इस रोड से आओगे, इस पे पेड़ हम और आप दोनों मिलकर लगाएं, इससे हमारे दूसरे स्टेट से बेहतर संबंध बनेंगे और हम उनके सहयोग से लगाएं।
भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1,98,000 एकड़ भूमि में हरित आवरण में वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार के अभियानों और प्रयासों ने कैसे प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया है। परिक्रमा के लिए शैलेंद्र, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember Gandhian freedom fighter Gangadhar Rao Balkrishna Deshpande, who died on the 30th of July 1960. He played a prominent role in arousing feelings of patriotism amongst the people of Karnataka and Maharashtra.
Gangadhar Rao was born on the 31st of March 1871 in Belgaum, Karnataka. He was initially more inclined towards social reforms but got inspired towards the freedom movement when he met Lokmanya Tilak. Referred to as the Lion of Karnataka, Gangadhar Rao led the youth of Karnataka in the struggle for Swaraj.
After the death of Tilak, Deshpande looked upon Gandhiji as a natural successor of Tilak's vision and philosophy. When Gandhiji started the Salt Satyagraha movement, Deshpande too defied the law by selling contraband salt and was arrested.
He was called the Khadi Bhagiratha of Karnataka as he went from village to village creating awareness about the Khadi movement.
Due to the leadership of Gangadhar Rao, the residents of Belgaum participated enthusiastically in the Quit India movement in 1942. The effective organization and implementation of the Quit India movement in Belgaum and its surrounding districts soon came to be known as the Karnataka pattern, and this became popular in the entire country.
Gangadhar Rao Deshpande passed away on the 30th of July, 1960.
We also remember social reformer Muthulakshmi Reddy, who was born on the 30th of July, 1886, in the erstwhile princely state of Pudukottai, now in Tamil Nadu. A multifaceted personality, Muthulakshmi Reddy had several firsts to her credit. She was one of the first woman doctors of the country, the first woman member of the Madras Legislative Council, the first woman to be elected as its deputy chairperson, the first president of the Women's India Association, and the first woman to be elected as alderman of the Madras Corporation. At the top of these achievements, she is known for her political activism in respect of social issues, including campaigning against child marriage and the Devadasi system.
Muthulakshmi's father, S. Narayanaswamy Iyer, the principal of Maharaja's College, was ostracized from his family because of his marriage to Muthulakshmi's mother, Chandrammal, a Devadasi. She developed a close relationship with the maternal side of her family, and this closeness made her very perceptive of the Devadasi community and their issues. Narayanaswamy Iyer broke the tradition and sent Muthulakshmi.
When Muthulakshmi passed the matriculation exam, she applied for admission to Maharaja's College, but her application was not welcomed, as the authorities felt she might demoralize the male students. However, the Maharaja of Pudukottai ignored these objections and gave her a scholarship.
During her college years, Muthulakshmi met Sarojini Naidu and began to attend women's meetings. The two great personalities who influenced her life were Mahatma Gandhi and Annie Besant.
In 1930, Muthulakshmi Reddy introduced in the Madras Legislative Council a bill which later became the Devadasi Abolition Act. The bill had to wait for over 15 years to become an act.
Muthulakshmi Reddy continued to work for the empowerment of women till her death on the 22nd of July, 1968.
And coming to the sports field now, in Paris Olympics today, Manu Bhakkar and Sarabjot Singh clinched bronze in mixed 10-meter air pistol shooting by defeating the South Korean pair. With this win, Manu etched her name in the history of Indian sports by becoming the first Indian athlete to win two medals at the same edition of the Olympics. Sarabjot, on the other hand, got his first Olympic medal earlier. Manu won a bronze in the women's 10-meter air pistol event. Shuttler PV Sindhu and wrestler Sushil Kumar are the only two Indians to have won multiple Olympic medals, but in separate Olympic games. And now we will take you live to our correspondent who is there at Paris, Shaurya Chaudhary. Shaurya, Manu Bhakkar clinched the bronze medal today, which is a big achievement. What more latest updates do we have from Olympics today?
Well, bonjour from Paris. It's a very hot afternoon here in Paris. But India's shooting team is also on a hot streak, as you rightly pointed out. Manu Bhakkar especially is on a hot streak. Two medals undented in the same Olympics. The first Indian to do so was before the independence, Norman Pritchard. So in independent India, she's the first one to achieve this feat. And it's a brilliant achievement by Manu. You have to understand that in Tokyo, she failed because of a pistol malfunction.
Right.
And this has been a redemption arc for her. She has gone through a lot. She has worked on her technique, her concentration. And after 8.5 years of toil, she is an Olympic champion, a double Olympic medalist. And a medalist from India, which is a rare thing, and the first woman from India to win a medal. And now she has teamed up with Sarabjot, who's a young, up-and-coming archer. And this is part of the top team. Both of them have been part of it. And their efforts are bearing fruit, and this will, encourage and inspire the other Indian athletes here to go for more medals. Lots of action going on today, as you know. Right now, the hockey team is playing against Ireland. The match is on, and I'm at the archery venue. It's a cauldron-like atmosphere here. The heat is really, it's a heat wave that's passing through the city. So very strange weather, because when we arrived, it was raining, and it was pretty cold. And now the Indians will probably have a better chance of doing well because the weather's such, you know. And in Archery, women's individual first round, Ankita
Pappan
will be at a Mysore in a while. And Bhajan Kaur will then take on Sia Kamal. There's a badminton match also. Satvik Sairaj, Rankin Reddy, Chirag Shetty taking on lots of boxing action as well. So the day here is just about starting off. And with that news of that medal coming in from shooting, and Manu can actually win a third medal, you know, that will be a big, big thing in 25 meter, in the 25 meter event, women's event.
Right,
so,
right, Shaurya.
First of all, a great start to the day.
Yeah, Shaurya, keep enjoying the weather while also keep us updated on the events which is coming up the whole of the day today in Paris. Okay, thank you so much. And Prachi, now we take the business news. India's equity benchmark indices Sensex and Nifty had a marginal gain today. The BSE Sensex added 100 points or 0.12% to close at 81,455. The NSE Nifty added 21 points or 0.09% to close at 24,857. So that is for the business news of the day. And let's come to the last segment now where we pay some tribute to great personalities. And where do we start with?
बिल्कुल आज तुलसीदास जी की पुण्यतिथि है और उनकी कहावत है कि दया धर्म का मूल है पाप का मूल अभिमान तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण बताया है कि दया जो है वो धर्म का मूल है और जो पाप है वो अभिमान का इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए तुलसीदास जी ने वही हैं वो जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपने अद्भुत रचनाओं से समृद्ध किया उन्होंने अपना पूरा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है रामचरितमानस और ये हम सब जानते हैं
राइट एंड टुडे स्टार्टिंग विद द बर्थ एनिवर्सरी इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना who was an actress of Marathi and Hindi film honored with Padma Shri and also with Maharashtra Bhushan and who epitomized the roles of mother in most of her films and often played an on-screen close relative to the main character.
बिल्कुल बिल्कुल और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बल्कि 60-70 के दशक की इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट कॉन्सेप्ट है मिडिल क्लास की लड़ाई समाज की सबसे बड़े वर्ग की लड़ाई थी और वही सिनेमा के पर्दे पर दिखाया भी जाता था ऐसे में जो नायक हैं वो तो खैर लोकप्रिय हैं ही मगर जो अभिनेत्रियां उस समय सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में मां के किरदार को निभा रही थी उनके लिए भी भरपूर दाद बनती है उन्हीं माओं में से एक मां थी सुलोचना लाटकर हमारे समाज में मां को ईश्वर की प्रतिमूर्ति कहा गया है और स्क्रीन पर जब मां के आंसू बहते थे तब पर्दे के उस पार जो लोग देख रहे होते थे उनकी जो आंखें थी वो भी नम हो जाती थी तो सुलोचना को शायद इसलिए बॉलीवुड में मां के रूप में जो है सहजता से तमाम लोगों ने जनता ने स्वीकारा क्योंकि न केवल वो एक बाकमाल अभिनेत्री थी बल्कि उन्होंने जनता के सबसे चहेते कलाकारों की मां के रूप में ऑन स्क्रीन भूमिका निभाई
राइट प्राची एंड Today we also wish a very happy birthday to Sonu Nigam, the veteran singer, music director, dubbing artist and actor who is also a recipient of Padma Shri, who celebrates his 51st birthday today and has captivated hearts with his melodies in the Hindi film industry.
Ye dil, deewana, deewana hai ye dil, deewane ne mujhko bhi दीवाना पीयू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है तो पल रुका ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ तू ही तू सतरंगी रे तू ही तू मन रंगी रे तू ही तू सतरंगी रे तू ही तू मन
मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे.
So this was a medley of some all-time favorite songs sung by him, and of course the time is not giving us any more.
बिल्कुल, क्योंकि समय हो चला है अब आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए प्राची प्रिया और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. नमस्कार.